ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 30वां अध्याय प्रचेताओं के कार्यकलाप। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो भिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छताम् यानम् अतृप्तचक्षुषाम् ययो स्वधामानपवर्गवीर्यः। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो भिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छताम् यानम् अतृप्तचक्षुषाम् ययो स्वधामानपवर्गवीर्यः। इति अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: ऋषि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक श्री भगवान ने तथास्तु तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो कहा। तत्पश्चात अपराजित भाव से भगवान ने विदा ली। प्रचेता गण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने जी भरकर उन्हें नहीं देखा था। तात्पर्य: इस श्लोक में अनपवर्ग वीर्य शब्द महत्वपूर्ण है। अनह मतलब विना, पवर्ग मतलब भौतिकवादी जीवन शैली तथा वीर्य मतलब शक्ति। श्री भगवान की शक्ति में 6 मूल ऐश्वर्य हैं, जिनमें एक विरक्ति है। यद्यपि प्रचेता भगवान को जी भरकर देखना चाहते थे किंतु वे चले गए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यह अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन है। यद्यपि प्रचेता उनके प्रति आकृष्ट थे किंतु वे चले गए, यह उनकी विरक्ति का सूचक है। ऐसी ही विरक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखलाई जब वे संन्यास लेकर अद्वैत प्रभु के साथ रहे आए। वहां के सभी भक्त चाह रहे थे कि वे कुछ दिन तक और रुकें। महाप्रभु बिना हिचक के वहां से चले गए। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपार दया भाव रखते हैं किंतु वे किसी से लिप्त नहीं होते। वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों पर समान रूप से दयालु हैं। हरे कृष्णा। प्रसंग ये चल रहा है कि प्रचेतागण का सौभाग्य रहा कि उनके सामने स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान उनकी तपस्या से उनके भक्ति भाव से, उनके परस्पर प्रेम की भावना से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रचेताओं को वरदान दिया कि जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा। प्रचेताओं ने चाहा था कि वो अनंत वरदान उनसे प्राप्त करें, अर्थात उनकी सेवा में वो सदा संलग्न रहें। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। ये सारी कथा अर्थात शुरुआत से लेकर जब राजा प्राचीन बर्हिषत को दर्शन देने आते हैं नारद मुनि, और उनकी कथा आगे चलकर फिर राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्र प्रचेताओं की कथा आती है, यहां तक ये सारी कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। इस श्लोक में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि भगवान ने तथास्तु कहकर प्रचेताओं के इच्छाओं की तृप्ति कर दी, पूर्ण कर दी, और फिर वो स्वधाम लौट के चले गए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, अनपवर्ग वीर्य, इस शब्द से भगवान को जो संबोधित किया गया है वो महत्वपूर्ण है। और यहां प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, अन मतलब बिना, पवर्ग मतलब भौतिकवादी जीवन शैली, और वीर्य मतलब शक्ति। अनपवर्ग वीर्य मतलब जिनकी शक्ति का घटन कभी नहीं होता। जो पवर्ग शक्ति है उस शक्ति का घटन हमेशा होता है, मतलब जो भौतिक शक्ति है। यहां हम देखते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसकी शक्ति ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती, आदमी थक जाता है। भौतिक दृष्टि से आदमी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसकी शक्ति सीमित है। हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में जब जाम्बवान ने युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण से, तो जाम्बवान लगातार 28 दिन जोरदार मलयुद्ध करने लगे भगवान श्री कृष्ण के साथ। अब हमें याद रखना है कि जाम्बवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जाम्बवान तो ब्रह्मा जी के अंश माने जाते हैं। रामलीला में भाग लेने के लिए जाम्बवान प्रकट हुए थे, त्रेता युग के समय से रहे थे, और कृष्ण भगवान तो द्वापर युग के अंत में आए। लेकिन फिर भी जाम्बवान इतने वृद्ध होने के बाद भी काफी शक्तिशाली थे। और जो सामंतक मणि की चोरी हुई थी और उसका झूठा आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आया था कि भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर ऐसे किया है, क्योंकि सत्राजित ने उनको यह मणि नहीं दी थी। इसे हमें यह पता चलता है कि झूठा आरोप लगना, लोगों की निंदा होना, यह कृष्ण भगवान के ऊपर भी आता था। तो हम तो साधारण जीवों की बात तो क्या है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि मेरे नाम के ऊपर जो कलंक लगा है उसको मैंने मिटाना चाहिए, और जिसने भी वास्तव में इस मणि को चुराया है उसे मुझे ढूंढ निकालना होगा। कथा लंबी है, खैर ढूंढते ढूंढते वो जाम्बवान के गुफे के बाहर आते हैं। एक बालक वहां पर उस मणि के साथ खेल रहा होता है, और जब वहां पर कृष्ण भगवान उस मणि को देखते हैं उस बालक के हाथ में, तो उस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं और वापस ले जाना चाहते हैं सत्रजीत के पास कि देखो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो बिल्कुल झूठा है, और ये रहा तुम्हारा मणि, ले लो। हुआ ये था कि सत्रजीत ने अपने भाई को ये दिया था, और वो भाई ने हार के रूप में उस मणि को पहनकर वो शिकार करने गया था। शिकार करते समय एक शेर ने आक्रमण किया था और सत्रजीत के भाई को मार डाला था, और उस शेर को मारकर जाम्बवान ने उस शेर से मणि ले ली थी, और जाम्बवान ने अपने छोटे पुत्र के मनोरंजन के लिए ये स्यमंतक मणि वहां रख दी थी। और जब ये बच्चा इस स्यमंतक मणि को के साथ खेल रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण वहां आए। जब श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को ले लिया तो जो वहां पे धात्री थी तो उसने शोर मचाया। जाम्बवान ने शोर सुनकर वो गुफे से बाहर आए और देखा कि कौन है जो मेरे बच्चे से उसका खिलौना चोरी कर रहा है, तो कृष्ण को पहचान नहीं पाए और फिर उनसे युद्ध किया। मलयुद्ध लगातार 28 दिन चला और सुबह से रात तक, लेकिन दोनों का युद्ध जो है बराबर था। और फिर जाम्बवान 28 दिन के बाद सोचने लगे कि मैं तो बूढ़ा होते आ रहा हूं, शायद अगर मैं जवान होता तो मैं बहुत कुछ कर पाता। अभी याद रहे कि त्रेता युग में भी जाम्बवान बूढ़े थे क्योंकि जाम्बवान ने कहा कि जब मैं जवान था तो मैं तो कूद कर पृथ्वी को 3 बार चक्र लगा सकता था, लेकिन अब मैं केवल यहां से लंका जा पाऊंगा लेकिन लौट के नहीं आ पाऊंगा। तो उस समय बूढ़े थे तो इस समय कितने ज्यादा बूढ़े हुए होंगे। लेकिन इतने बूढ़े होते हुए भी 28 दिन तक वो कृष्ण के साथ युद्ध कर पाए और कृष्ण को बड़ा आनंद आया। उन्होंने भी वीर रस का आस्वादन किया क्योंकि जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो योग्य व्यक्ति तो केवल उनके भक्त ही होते हैं। तो जाम्बवान के साथ युद्ध किया भगवान ने, मुक्का प्रहार हुआ, कुश्ती हुई, और ऐसे चलते चलते जाम्बवान को पता चला कि ये जो प्रतिद्वंद्वी है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन आज तक मैंने ऐसे किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया जो 28 दिन तक लगातार बिना थके हुए वो मेरे साथ युद्ध करता रहे, बल्कि मैं थके जा रहा हूं लेकिन ये नहीं थक रहे। इनकी शक्ति का घटन नहीं हो रहा है लेकिन मेरी शक्ति का घटन हो रहा है। तब उनको समझ में आया कि ये वास्तव में वही उनके आराध्य भगवान होंगे। फिर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से शरण ली और कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब मुझे पता चला है कि वही आप मेरे आराध्य देव हैं जो जिनकी सेवा मैंने त्रेता युग में की थी। आई आप वही श्री राम हैं जो आप इस रूप में आए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए जाम्बवान के ऊपर कृपा बरसाई और कृष्ण भगवान ने स्यमंतक मणि लेकर वो वापस चले गए। तो हम समझ सकते हैं कि जाम्बवान जितने इतने शक्तिशाली व्यक्ति भी उनकी शक्ति की सीमा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसलिए उनको यहां अनपवर्ग वीर कहा गया है। पवर्ग ये भौतिक संसार को संबोधित करता है। शास्त्र में बताया जाता है कि जैसे व्यंजन है संस्कृत भाषा के, क ख ग ग घ त थ द ध न, ये सब इसको क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, प वर्ग इत्यादि कहते हैं। जो प वर्ग में आता है प फ ब भ म, संसार की जो परिभाषा है या व्याख्या है वो ये प फ ब भ म से की जाती है। प मतलब परिश्रम, यहां पे हर एक प्राणी को परिश्रम करना पड़ता है और इतना परिश्रम करना पड़ता है कि मुंह से फेन आते हैं। फ और फिर ऐसे परिश्रम से जो कि गलत होता है, जिसमें पाप होते हैं, फिर उसको बंध जाना पड़ता है, बंधन, कर्म बंधन में आदमी फंस जाता है। कर्म बंधन में फंसने के बाद उसे हमेशा आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा, बहुत भयानक दुख आएगा मेरे जीवन में, ये चिंता रहती है। इसलिए वो हमेशा भयभीत रहता है, तो भीति। और अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है, मृत्यु, मरण। प फ ब भ म इसको भौतिक जगत कहते हैं। तो सारी सृष्टि जो है ये केवल प फ ब भ म है। जितने भी बड़े राजा महाराजा हुए, जितने भी बड़े योद्धा हुए, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए, जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए, संगीतकार हुए, नेता हुए, सबका इतिहास क्या है? प भ भ भ म, बस। इसलिए इसको पवर्ग कहते हैं और मुक्ति को अपवर्ग कहते हैं, मतलब इस पवर्ग से परे। जो इस पवर्ग से छूट चुका है, इसके इससे मुक्त हो गया है, वो अपवर्ग। इसलिए अनपवर्ग और अपवर्ग एक ही अर्थ है, चाहे वो अपवर्ग वीर्य हो या अनपवर्ग वीर्य हो, बात एक ही है कि वो शक्ति जिसका घटन नहीं होता, या जो शक्ति जो भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे अलग अलग सुंदर शब्दों से संबोधित किया जाता है, उनके गुणों के हिसाब से। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चले गए। हालांकि भक्त उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी भगवान चले गए। तो ये भगवान के वैराग्य के लक्षण हैं। भगवान के छह गुण होते हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञानम वैराग्ययोश्चैव सन्नम भगव इतिंगणा। तो भगवान के सर्व ऐश्वर्य षड ऐश्वर्यों में से पहला ऐश्वर्य है कि वो सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा वीर है, सबसे ज्यादा यश उनका है, सबसे ज्यादा सौंदर्य उनका है, सबसे ज्यादा ज्ञान उनका है और सबसे ज्यादा वैराग्य उनका है। परिपूर्णता में भगवान श्री कृष्ण के पास ये छह ऐश्वर्य सदा विद्यमान रहते हैं और उनमें से आखिरी जो ऐश्वर्य है वो है वैराग्य का। और यहां भी भगवान ने वैराग्य का प्रदर्शन किया। जब कोई लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या हम उस स्थान को छोड़ के जाना चाहते हैं? कौन चाहेगा? हर एक व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। अपनी पूजा हो, जैसे कोई बड़ा मंत्री हो, वो किसी सभा में जाता है और वहां पे सभी लोग उनका वाहवाकार कर रहे हैं, आप कितना अच्छा राज्य चला रहे हैं, आप कितने महान व्यक्ति हैं, तो ऐसे सभा से कोई नेता हो उठकर जाना नहीं चाहेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, ज्यादा लोग पत्थर वगैरह फेंकते हैं, गालियां देते हैं, इसलिए जल्दी से दो दो मिनट में वो एक दूसरे जगह में चले जाते हैं। लेकिन पृथु महाराज की कथा में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में कि कैसे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। पृथु महाराज भी भगवान के अवतार होने के नाते निराशक्त थे, कहते थे नहीं, मेरी प्रशंसा नहीं करो, अभी तक मैंने कोई लीला की ही नहीं है, अभी अभी तो मैं प्रकट हुआ हूं, इसलिए अब स्तुति करना ये उचित नहीं है। तो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति ऐसे स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता जहां उसकी स्तुति हो रही हो, उसकी प्रशंसा हो रही हो, जहां लोग उसे प्रेम कर रहे हो। हम ये देखते हैं कि जहां किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता, लोग उसकी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो ऐसे स्थान को छोड़ के जाना स्वाभाविक होता है। कई बार लोग अपने पारिवारिक जीवन से तंग आ जाते हैं, बोलते हम छोड़ के जा रहे हैं, या किसी भी स्थान के एक नौकरी में वहां तंग आ जाते हैं, वहां से छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जहां हम हैरान हो जाते हैं, जहां प्रेम नहीं है, वहां उस स्थान को छोड़ के जाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर किसी स्थान में हमें बहुत प्रेम मिलता हो, हमारा आदर सत्कार होता हो, हर एक व्यक्ति हमारी बात सुनता हो, हमारा सम्मान होता हो, तो कौन ऐसे व्यक्ति छोड़ के जाना चाहता है उस स्थान को? लेकिन भगवान ऐसे स्थान को छोड़ के जा रहे हैं, प्रचेत आगर उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके अनन्य भक्त हैं, हर दृष्टि से उनकी सेवा करना चाहते हैं। प्रचेतागण ये नहीं चाहते हैं कि भगवान उनको छोड़ के चले जाएं, प्रचेतागण चाहते हैं कि भगवान उनके पास में रहें। फिर भी भगवान ने तुरंत एक क्षण में निर्णय लिया, वो छोड़ के चले गए। ऐसे कई उदाहरण हैं, उनमें से एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि काटवा शहर में जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उनके हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन के प्रचार को बढ़ाने के लिए, तो सभी लोग बड़े दुखी हो गए। नवद्वीप में सारे लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सबको छोड़कर चले गए। उनकी एक नवयुवती सुंदर स्त्री पत्नी थी, जो एक आदर्श पत्नी थी, उनकी इतने अच्छे ढंग से सेवा करती थी। उनके एक वृद्ध माता थी जिनका कोई पति नहीं थे, जो विधवा थी। उन दोनों को छोड़कर महाप्रभु ने संन्यास लिया। उस समय महाप्रभु की आयु केवल 24 साल की थी। तो कितना वैराग्य! बताया जाता है कि कौन है वो व्यक्ति जो इतने सुंदर स्त्री को छोड़कर संन्यास ले सकता है, या इतने प्रेम करने वाली मां को छोड़कर संन्यास ले सकता है, या इतने प्रेम भरे भक्तों को छोड़कर वो संन्यास ले सकता है। लेकिन महाप्रभु ने किया, और ये वैराग्य का ऐश्वर्य का प्रदर्शन उन्होंने किया। संन्यास लेने के बाद वो चाहते थे कि जगन्नाथपुरी छोड़कर मैं वृंदावन जाऊं। जगन्नाथपुरी में जो भी उनके भक्त थे, वो भगवान का संग छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा को टालते रहते थे। कहते थे कि नहीं नहीं अभी नरसिंह चतुर्दशी आएगी, उसके मनाकर उत्सव फिर आप जाइए। नरसिंह चतुर्दशी आ जाता तो कहते नहीं नहीं अभी डोल यात्रा आएगी, तभी आप जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद में फिर आप चले जाना। रथ यात्रा आ जाता, नहीं नहीं अभी जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी के बाद चले जाना। जन्माष्टमी आ गई, नहीं नहीं अभी बलराम जयंती आने वाली, फिर आप चले जाना। ऐसे टाल के टाल के टाल के आखिर में भगवान ने कहा नहीं अभी मुझे जाना ही है। तो भक्तों ने कहा आप तो स्वराट हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, आपको कौन कुछ क्या कह सकता है, आपको कौन रोक सकता है, जब चाहते हैं आप चले जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से उठकर चले गए वृंदावन की ओर। और उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य वो बेहोश होकर गिर पड़े विरह में, क्योंकि भगवान का संग छोड़ना नहीं चाहते थे। गदाधर पंडित पीछे पीछे आ गए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके प्रिय भक्त बने थे, हालांकि वो बेहोश होकर गिर पड़े, चैतन्य महाप्रभु ने घूम के देखा भी नहीं इनको क्या हुआ है, बेहोश हुए गिर पड़े, बिल्कुल वैराग्य विरक्त होकर चले गए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कौन समझ सकता है भगवान के लीलाओं को, भगवान किस तरह से कार्य करते हैं, समझना बहुत मुश्किल है। वैष्णवों की क्रियाओं को समझना मुश्किल है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, कि वैष्णव की क्रिया मुद्राओं को समझ नहीं सकते तो भगवान के कार्यों को कार्यकलापों को कैसे समझ सकते हैं। वज्रात अपि कठोराणी, वज्र से ज्यादा कठोर होते हैं, और मृदुनापि अपि कोमलात, कि मृदु की तरह भी कोमल होते हैं। कभी एक गुलाब के फूल की तरह भगवान कोमल होते हैं, और कभी कभी वज्र की तरह कठोर होते हैं। तब कठोर हृदय प्रकट किया भगवान ने, देखा भी नहीं कि पीछे सार्वभौम भट्टाचार्य विरह में कितने तड़प रहे हैं, बेहोश होकर गिर पड़े, इतने वृद्ध हैं, क्या होगा नहीं सोचा, तुरंत चले गए। उनको जाना था, वो चले गए वृंदावन। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में ये वैराग्य की के ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, सारे ब्रजवासियों को छोड़कर चले गए। ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति अतुल्य है, कोई ऐसा प्रेम नहीं कर सकता भगवान श्री कृष्ण को कि जैसा ब्रजवासियों ने किया था। ऐसा कोई ब्रजवासी नहीं था जो कि भगवान कृष्ण को अपने प्राण से कम प्यार करता हो, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने कुटुंब के सदस्यों से ज्यादा, अपने निजी प्राण से ज्यादा हरेक ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता था। सुबह रात, सुबह से रात तक, रात भर भी ब्रजवासियों के मन में एक ही विचार रहता था, वो है कृष्ण। कृष्ण के बिना वो जी नहीं सकते थे, दिन भर रात भर केवल कृष्ण का स्मरण करते रहते थे। इतना तीव्र प्रेम लेकिन ऐसे तीव्र प्रेम के वातावरण में ऐसे प्रेमी भक्तों को छोड़कर भगवान एक क्षण में चले गए और वापस नहीं आए। यह है भगवान का वैराग्य। इस प्रकार से भगवान ने कई बार ऐसे वैराग्य के ऐश्वर्य को प्रदर्शन किया। भगवान रणभूमि को छोड़कर चले गए, अपने नाम, अपने इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं की कि लोग मेरी निंदा करेंगे कि मैं क्षत्रिय होते हुए मैं रणभूमि को छोड़कर चला गया, लोग मुझे रणछोड़ कह रहे हैं कि मैं रणछोड़ कर भाग गया, मैं कायर हूं। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, मेरी अपमान होगा, मेरा तिरस्कार होगा, कोई बात नहीं, वैराग्य। और द्वारका में भी जब अपने 16,108 रानियों के साथ में रहते थे तो उन्होंने अपने आप को विस्तार किया और हर एक रानी के साथ उन्होंने विस्तारित रूप में वो रहे। हर एक रानी को रहता था कि भगवान कृष्ण केवल मेरे साथ में है। इस तरह से 16,108 महलों में उन्होंने 16,108 रानियों को स्थान दिया और अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित करके हर एक रानी के साथ में रहते। और जब रात बीत जाती और जो मुर्गी है वो आवाज करती, कुकड़कों का आवाज करती, सुबह उठने का समय हो जाता, उस समय अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करते थे, यही अलार्म क्लॉक थे उस समय। और उस समय द्वापर युग था, कली नहीं था, जब मुर्गी सही बिल्कुल सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय आवाज करती थी। आजकल किसी भी समय करते हैं, तो आजकल किसी के वो निर्भर रहना मुश्किल है, मनुष्य हो या पशु हो। अचानक 12 बजे दोपहर को करते हैं, कभी शाम को 4 बजे करते हैं। तो मुर्गी की आवाज सुनकर कृष्ण भगवान उठ जाते और जो उनकी पठरानियां थी वो मुर्गियों को कोसने लगती, अरे क्यों जगा दिया तुमने, और सूर्योदय को सूर्य को कोसती कि क्यों तुम्हारा उदय होना था इतने जल्दी, अभी कृष्ण हमसे दूर चले जाएंगे, अपने दिन के दरबार में चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे अपने कार्यों में। लेकिन कृष्ण भगवान परवाह नहीं करते, उनको कार्य करना था, कार्य करने के लिए उठ के उठ रानियों को छोड़ के चले जाते। तो हर तरफ हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने वैराग्य का प्रदर्शन किया। तो यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने वैराग्य का प्रदर्शन किया, अपने प्रिय भक्तों को छोड़कर चले गए। एक क्षण में अपने भक्तों की प्रार्थना सुन ली, भक्तों को वरदान दे दिया, काम खत्म हो गया, चले गए। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब धरातल पर प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, जैसे उन्होंने देखा कि मेरी लीला समाप्त हो गई, जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां आया था वो समाप्त हो गया, अब मुझे स्वधाम लौट के जाना चाहिए, तो लौटकर चले गए। उसके बाद उत्पात करके चले गए, उसके पहले अपने जो यदुकुल के निवासी थे उनको आपस में लड़ाया, को एक निमित्त डाल दिया और अपने आपस में लड़के यदुकुल का नाश हो गया और फिर वो चले गए। वो जानते थे कि पांडव मेरे बिना क्या करेंगे, पांडव तड़प तड़प के वो प्राण त्याग करेंगे, लेकिन सोचा नहीं, अर्जुन को भी छोड़ दिया। अर्जुन उनके साथ में आए थे द्वारका में उनका संग लेने के लिए, लेकिन अर्जुन को भी छोड़ दिया, अपने प्रिय भक्त, क्योंकि उनका समय हो गया था जाने के लिए, और चले गए स्वधाम। क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने अवतार लिया था उनके भक्त भी आए थे, वो काम संपन्न हो गया था। इस तरह से भगवान अलग अलग लीलाओं के माध्यम से अपने अलग अलग ऐश्वर्यों को प्रदर्शित करते हैं। यहां पर प्रचेताओं के उदाहरण से भी हम सीख सकते हैं कि प्रचेतागण भगवान का संग करने के लिए कितना आतुर थे। अनिच्छताम यानम अतृप्त चक्षुषाम, अतृप्त थे भगवान को देखकर, अनिच्छताम वो भगवान को छोड़ना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि भगवान उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि अभी तक वो तृप्त नहीं हुए थे भगवान को का दर्शन करके। जिस व्यक्ति को भगवान का दर्शन होता है वास्तव में, तो भगवान का दर्शन छोड़ने के लिए कभी नहीं चाहता, कभी भी वो तृप्त नहीं होता। यह भी भक्ति का एक गुण है कि ऐसा नहीं है कि भक्ति करके भक्त सोचता है चलो अब बहुत भक्ति हो गया अब थोड़ा छुट्टी ले लें। भक्ति का ये गुण ही होता है अहितु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब बिना कोई रुकावट के, भक्त कभी भक्ति करके थक नहीं जाता। इस संसार में भोग और त्याग के चक्कर में लोग अटके पड़े हैं। भोग करते हैं थोड़ी देर के लिए, भोग से थक जाते हैं, फिर त्याग करते हैं उस भोग को, फिर त्याग से थक जाते हैं, उस त्याग को त्याग करते हैं, फिर भोग में आ जाते हैं। और इस तरह भोग त्याग भोग त्याग, इसलिए उनको जीवन में स्थिरता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि न तो भोग और न त्याग ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है सेवा, भक्ति। जब जीव भक्ति में स्थित हो जाता है तब उस समय वो स्थिर रह सकता है, वहां से हटता नहीं है। जैसे व्यक्ति भोग को त्याग सकता है, त्याग को त्याग सकता है, लेकिन भक्ति को त्याग नहीं सकता जब वो शुद्ध भक्ति की अवस्था में आता है। हाँ, कच्चे अवस्था में हो सकता है भक्त भक्ति को त्यागे, लेकिन भगवान उसको त्यागते नहीं है, इसलिए भगवान फिर भी उसको बाल खींच के ले आते हैं भक्ति में, इसलिए शिखा रखते हैं, चलो आओ वापस, मुझे छोड़ के जा रहे हो, चलो। इस प्रकार से वो भक्ति करते रहता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भक्ति हमारी स्वरूप सिद्धि है, भक्ति हमारा स्वरूप है, हमारा स्वधर्म है, इसलिए इसी में हम बिल्कुल स्थिर रह सकते हैं। और कभी भी जितना भी भक्ति करने का मौका मिले हम उसको छोड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। चाहे भगवान का दर्शन हो, चाहे भगवान की कथा हो, भगवान के कीर्तन हो, जैसे श्रीमद् भागवत में नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी को बताते हैं, वयम तुन वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कहते हैं कि जो रसिक भक्त हैं भगवान के, रसज्ञ, जो भगवान की भक्ति के रस को जानते हैं, जो इनको चखते हैं, वो कभी भी भगवान की लीलाओं को सुनने में थक नहीं जाते। इसलिए ये साधु सब बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को कि आप जो कृष्ण कथा बोल रहे हैं वो बोलते जाइए, कभी रुकिए मत, क्योंकि हम भगवान की इन सुंदर कथाओं को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि चलो बहुत हो गया कृष्ण कथा, अभी और कथा हमें नहीं सुनना है, इतनी लीलाएं सुन ली, उपदेश सुन लिया, अभी चलो थोड़ा कुछ और, अभी टीवी चालू कर लेते हैं। नहीं, और सुनिए और बोलिए और बोलिए, हम थक नहीं जाएंगे। परीक्षित महाराज ने भी ऐसे ही कहा सुखदेव गोस्वामी से, आप ये मत सोचिए कि हम थक जाएंगे आपकी लीला, आप कृष्ण की लीला सुनकर, आप तो बोले जाइए। ये मत विचार कीजिए कि ये राजा है, इसको भूख लगी होगी, प्यास लगा होगा, थक गया होगा, आखिर पहले इतने बड़े राजमहल में रहता था, एक ऐश आराम के साथ रहता था, अभी कैसी तपस्या करेगा, थोड़ा और एक ब्रेक ले लें, थोड़ी छुट्टी दे दें 15 मिनट के लिए, फिर से चालू करें। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि शायद सुखदेव गोस्वामी ऐसे सोच रहे हो, तो उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी से, नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए, आप 24 घंटे आपकी कथा चालू रखिए, क्योंकि जब हम आपकी मुख से कृष्ण कथा सुनते हैं न तो भूख न प्यास न थकावट हमें सताती है, जो कि साधारण प्राणी के लिए सहन करना बहुत कठिन होता है इस जगत में, लेकिन क्योंकि आपके मुख से यह अमृत की वर्षा हो रही है इसलिए मेरे भूख प्यास थकावट को बिल्कुल वो नष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं थक नहीं रहा हूं, आप बोले जाइए, मैं अतृप्त हूं। उसी प्रकार से गोपियां भी, कृष्ण के ब्रजवासी भी, वो भी भगवान को हमेशा देखना चाहते थे, कृष्ण की कथा करते रहना चाहते थे। ये भक्ति के लक्षण होते हैं और ये एक थर्मामीटर होता है जिससे हम नापतोल कर सकते हैं कि कौन भक्ति में कितना आगे बढ़ा हुआ है, भगवान की सेवा करने के लिए कितना कोई आतुर है, भगवान का दर्शन लेने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान के ग्रंथ पढ़ने के लिए कौन कितना आतुर है, कौन कितना अतृप्त रहता है भगवान की भक्ति करने से, इससे हम समझ सकते हैं कि कौन भक्ति में कितना आगे बढ़ा हुआ है। तो यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि अरे हम तो भक्ति करते हैं पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए, ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध देती, हम कहते हैं कि भक्ति करने से आत्मा संतुष्ट हो जाती है, और आप कहते हैं कि अतृप्त हो जाता है व्यक्ति। अतृप्त व्यक्ति इंद्र तृप्ति में रहता है, भक्ति में भी रहता है। अभी हम यहां देख रहे हैं, यहां स्पष्ट बताया गया है, यानम अतृप्त चक्षुषाम, कि जो प्रचेता गण थे वो भगवान का दर्शन करके अतृप्त थे। लेकिन भक्ति में जो अतृप्तता आती है और इंद्र तृप्ति में भौतिक जीवन में जो अतृप्तता आती है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक जीवन में जो अतृप्तता है उसके लक्षण क्या होते हैं, प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में बताते हैं, यन्मय तुमादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडो यनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजः कंडो तिवन मनसिजं विषहेत धीरः। प्रहलाद कहते हैं कि ये संसार का जो भोग है मैथुन आदि, ये क्या है, सुखम ही तुच्छम, ये तुच्छ सुख है। कैसा प्रकार का सुख है, कंडू यनेन करयोर इव, जैसे हम हाथों को रगड़ते हैं तो ऐसे खुजली जब होती है और हम कुछ रगड़ते हैं तो कैसे हमें सुख मिलता है, वैसे प्रकार का सुख है ये। और सुख तो क्या, कंडू यनेन करयोर इव दुख दुखम, ये तो बड़ा दुख ही है, सुख नहीं है। तृप्यंत नेह कृपणा, और जो कृपण लोग होते हैं, जो बुद्धिमान नहीं होते हैं, जिनका हृदय छोटा रहता है, वो कभी भी तृप्त नहीं होते ऐसे इंद्र तृप्ति से। हालांकि बहु दुख भाज है, उनको इतना दुख मिलता है इंद्र तृप्ति से, फिर भी तृप्त नहीं होते, फिर भी और इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, जीवन भर इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, दुख भुगतते हैं, फिर भी इसको पाने योग्य समझते हैं। कंडूति वन मनसिजम विषहेत धीर, जो व्यक्ति धीर है इस खुजली के इच्छा को सहन करता है, विषहेत, ये जानते हुए कि ये जो भी भौतिक सुख है क्या है, मनसी जम, ज मतलब जन्म लेने वाला, मनसी मतलब मन से, मनसी जम मतलब ये जो भौतिक सुख है केवल एक कल्पना है, एक मन से उत्पन्न होने वाला स्वप्न है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, कोई सत्य नहीं है, इसलिए मनसी जम। कितने काव्यात्मक शब्द है ये, मनसी जम मतलब भौतिक सुख जो है मनसी जा, केवल अपना एक वहम है, अपना एक स्वप्न है, इसमें कोई वास्तविकता या सत्य नहीं है, सत्य केवल भगवान में है। इसलिए जो इस मन से उत्पन्न होने वाले तथाकथित सुख को, इस स्वप्न को त्याग सकता है, इसको सहन कर सकता है, वो धीर कहलाता है, सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति होता है। लेकिन भगवान तो स्वप्न नहीं है, वो तो सत्य है। वेद्यम अत्रु अत्र वस्तु शिवदम, वास्तवम अत्र, वास्तवम वस्तु, जो सचमुच में सच है वो है भगवान। वास्तवम अत्र वस्तु, वस्तु मतलब कोई अस्तित्व जिसका है, जो वस्तु है सचमुच जो चीज है। लेकिन ये संसार के जो सुख है सच लगता है लेकिन झूठा सच है ये। लेकिन जो भगवान और भगवान की भक्ति है वो वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तव में ये सच्ची बात है, इसलिए इसमें सच्चा आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं और इसमें अनंत सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं, और भगवान अनंत हैं तो भगवान की सेवा में सुख अनंत है, और भगवान की सेवा करते 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 आदमी कभी थक नहीं जाता, इसलिए वो भी अनंत है, इसलिए वो कभी तृप्त नहीं होता। तो भक्ति में जो अतृप्तता है उससे आनंद की वृद्धि होती है, लेकिन भौतिक जीवन में जो अतृप्तता है उससे दुख की वृद्धि होती है। यह अंतर है दोनों प्रकार के अतृप्तता में। इसलिए यहां पर जो अतृप्तता का अनुभव प्रचेतागण कर रहे हैं वो एक आध्यात्मिक शक्ति का ही एक प्रभाव है। अंदर ही अंदर वो कैसे दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि और मुझे सेवा दीजिए। प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आप ये सब हरे कृष्ण का जाप क्यों करते हैं, इसको आपको क्या मिलने वाला है, क्या फल मिलेगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि और हरे कृष्ण कहने का मुझे चांस मिलेगा। ये उद्देश्य है, हरे कृष्ण कहने का उद्देश्य है कि और हरे कृष्ण बोलो। मतलब हरे कृष्ण कहने से तृप्त नहीं होते कभी भक्त, और हरे कृष्ण बोलना चाहते। प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप लोग कोई भौतिक शब्द बोलिए, बहुत जल्दी आप थक जाएंगे, उब जाएंगे उससे। कोका कोला बोलते रहिए, कितना कोका कोला पीने से भी थक जाएंगे, बोलने से भी थक जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते थे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र इतने सालों से कर रहे हैं, हम थक नहीं गए, बल्कि हमारा स्वाद इसमें बढ़ रहा है, हमें और आनंद हो रहा है। हरे कृष्ण कहने से हम तृप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे असंतुष्टि को भौतिक असंतुष्टि की से तुलना नहीं करनी चाहिए। भौतिक संसार के लोग जो असंतुष्ट हैं वो तो हमेशा वैसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसे असंतुष्टता में भक्त को एक दिव्य आनंद मिलता है, और ये दिव्य आनंद का सागर भी बढ़ते रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, ये हरिनाम संकीर्तन करने का फायदा है कि हर दिव्य आनंद की वृद्धि कराने वाला ये हरिनाम है, ये भक्ति मार्ग है। और क्योंकि प्रचेतागण जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए ऐसे ही आनंद के सागर में डूब कर वो इसका मजा लूट रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।